तो आज की हमारी पड़ताल का विषय है एक बहुत ही खास संकल्प। ये पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा दिए गए युग निर्माण सत्संकल्प का दूसरा हिस्सा है।
हाँ, और ये सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य से, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल, और ये सिद्धांत एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य में सिमटा है।
शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे।
वाह, ये लाइन सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। शरीर एक मंदिर है, ये बात तो हम सबने कभी न कभी सुनी ही है।
हाँ, पर सत्संकल्प इसे सिर्फ एक कहावत की तरह नहीं देखता, वो कहता है इसे एक असलियत मानो, एक सच्चाई।
मैं यही समझने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसका असल में मतलब क्या है। तो चलिए इस एक वाक्य को खोलकर देखते हैं।
जरूर।
तो सत्संकल्प की शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प विचार से होती है, वो ये कि इस दुनिया में हमारा सबसे करीबी, सबसे वफादार साथी कोई और नहीं
बल्कि हमारा अपना शरीर है।
हाँ, एक ऐसे सेवक की तरह जो बिना थके, बिना कोई शिकायत किए 2400 घंटे हमारी सेवा में लगा रहता है, तब भी जब हम सो रहे होते हैं।
ये बहुत गहरी बात है। सोचिए, हमारी इंद्रियां, आँखें, कान, नाक, जीभ, ये सब हमें दुनिया का अनुभव कराती हैं। इन्हीं के जरिए हम सुख दुख, अच्छा बुरा, ये सब महसूस करते हैं।
सही।
और सत्संकल्प कहता है कि आत्मा इन अनुभवों में इतनी खो जाती है, मतलब इतनी मग्न हो जाती है कि वो शरीर को ही अपना असली रूप समझने लगती है।
ओ, मतलब हम ये भूल ही जाते हैं कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं।
बिल्कुल। और ये मान लेते हैं कि शरीर का अंत ही जीवन का अंत है।
और यहीं पर एक अजीब सी बात सामने आती है ना, कि जो हमारा सबसे वफादार साथी है, जिसके बिना हम कुछ अनुभव ही नहीं कर सकते,
हाँ
उसी के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं।
हाँ सत्संकल्प के शब्द तो बहुत कड़े हैं इस मामले में। वो कहता है कि हम अपने रहन सहन और आहार विहार से इसे समय से पहले ही कमजोर और बीमार बना देते हैं, और ये सब होता है अज्ञान की वजह से।
देखिए, प्रकृति ने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत सरल नियम बनाए हैं।
अच्छा।
हाँ, जिन्हें दूसरे जीव जंतु अपनी मोटी बुद्धि से भी समझकर स्वस्थ रहते हैं, वो अपनी पूरी उम्र जीते हैं, स्वाभाविक मृत्यु पाते हैं।
लेकिन मनुष्य
अपनी बुद्धि और अहंकार में इन सरल संकेतों को अनदेखा कर देता है। उसे लगता है कि वो प्रकृति से ज्यादा चालाक है और बस यहीं वो गलती कर बैठता है।
शरीर को लेकर समाज में अक्सर दो तरह की अतिवादिता, मतलब दो एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं।
हाँ बिल्कुल।
एक तरफ तो वो लोग हैं जो इसे नश्वर या मिट्टी का ढेला मानकर इसकी पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं,
उन्हें लगता है कि आत्मा की साधना के लिए शरीर पर ध्यान देना तो समय की बर्बादी है। और दूसरी तरफ बिल्कुल इसके विपरीत वो लोग हैं जो अपना सारा समय, सारी ऊर्जा, सारा पैसा बस शरीर को सजाने संवारने में लगा देते हैं,
इंद्रिय सुख में। हाँ, उनके लिए शरीर ही सब कुछ है, भोग का एकमात्र साधन। पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये दोनों ही रास्ते असंतुलित हैं, गलत हैं।
तो अगर ये दोनों रास्ते गलत हैं तो सही रास्ता क्या है, बीच का रास्ता क्या कहता है?
संतुलन का मार्ग। सत्संकल्प कहता है कि शरीर न तो साधना में कोई बाधा है और न ही केवल भोग का साधन। यह आत्म उन्नति के लिए एक बहुत जरूरी उपकरण है, एक साधन।
और इसीलिए इसे भगवान का मंदिर मानना चाहिए।
बिल्कुल। अब सोचिए, क्या कोई अपने मंदिर को गंदा रखता है?
नहीं, कभी नहीं।
उसे अपवित्र करता है? नहीं, उसे साफ सुथरा और पवित्र रखना एक कर्तव्य माना जाता है। ठीक उसी तरह शरीर को बुरी आदतों से रोगी बनाना भी प्रकृति की नजर में एक बड़ा अपराध है,
और इसकी सजा भी मिलती है।
हाँ, दर्द, बेचैनी और आर्थिक नुकसान के रूप में।
सत्संकल्प में एक बहुत ही, मैं कहूंगा, थोड़ी चौंकाने वाली बात भी कही गई है। वो ये कि बीमारियां कहीं बाहर से नहीं आती। अब ये बात आज के समय में, जहां हम हर पल बैक्टीरिया और वायरस की बात करते हैं, थोड़ी अजीब लगती है। कोई इस बात को कैसे समझे?
ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सत्संकल्प बाहरी कीटाणुओं के अस्तित्व को नकार नहीं रहा है।
अच्छा,
वो एक गहरे स्तर की बात कर रहा है। यहां समझने वाली चीज है जीवनी शक्ति।
जीवनी शक्ति मतलब हमारी इम्यूनिटी।
हाँ, आप इसे आज की भाषा में हमारी नेचुरल इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कह सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर विकारों को, मतलब जहरीले तत्वों को, बाहर फेंकने की एक अद्भुत शक्ति होती है।
ठीक है।
जब तक ये जीवनी शक्ति मजबूत है, तब तक बाहर के कीटाणु हम पर हमला करके भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते।
अच्छा, तो ये हमारी अंदरूनी रक्षा प्रणाली की तरह है।
तो फिर ये शक्ति कमजोर कैसे पड़ती है?
हमारे अपने असंयम से, अपनी गलत जीवन शैली से हम इस जीवनी शक्ति को रोज रोज नष्ट करते हैं।
ओह,
जब ये शक्ति कमजोर पड़ जाती है तो शरीर के अंदर पैदा होने वाले विकार और बाहर से आने वाले रोगाणु दोनों हम पर हावी हो जाते हैं। तो बीमारी का मूल कारण बाहरी कीटाणु नहीं हुए?
नहीं, मूल कारण हुई हमारी अपनी कमजोर जीवनी शक्ति।
तो सत्संकल्प में वो कौन से बड़े असंयम बताए गए हैं जो इस जीवनी शक्ति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं?
इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा अपराधी बताया गया है जीभ का चटोरापन।
जीभ का चटोरापन,
हाँ, स्वाद के लिए खाना, न कि स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए। ये एक ऐसी आदत है जो हमें जरूरत से ज्यादा और ऐसी चीजें खाने पर मजबूर करती है जो शरीर के लिए हानिकारक है।
इससे हमारे पाचन तंत्र पर बहुत बोझ पड़ता होगा।
बहुत भारी बोझ। खाना पचने की बजाय पेट में सड़ने लगता है और वही सड़न जहर बनकर खून में मिलती है और पूरे शरीर में फैलकर अलग अलग अंगों में बीमारियां पैदा करती है।
ये बात तो आज की पूरी फूड इंडस्ट्री और फास्ट फूड कल्चर तो इसी एक कमजोरी पर खड़ा है। ये तो 100% सच लगती है। जीभ के अलावा और क्या है?
इसके अलावा कामुकता की अधिकता, जो जीवनी शक्ति का बहुत तेजी से नाश करती है। फिर है नशेबाजी, शरीर और अपने आसपास की स्वच्छता में कमी, पूरी नींद न लेना,
और एक बहुत बड़ा कारण है, परिश्रम से जी चुराना।
बिल्कुल, आजकल की आरामदायक जीवन शैली जिसमें शारीरिक मेहनत लगभग खत्म ही हो गई है,
और इन सब के साथ साथ मन में डर, गुस्सा, चिंता जैसे नकारात्मक भाव,
ये भी हमारे स्वास्थ्य को अंदर से खोखला कर देते हैं।
हाँ, ये तो एक पूरी लिस्ट है। अगर हम ही अपनी गलतियों से समस्या को पैदा कर रहे हैं तो क्या सत्संकल्प इसका समाधान भी बताता है? इस चक्र को तोड़ने की शुरुआत कहाँ से की जाए?
बिल्कुल बताता है। समाधान बहुत सरल है और सिर्फ दो शब्दों में छिपा है, आहार और विहार।
आहार और विहार,
सत्संकल्प इन्हें स्वास्थ्य के दो स्तंभ कहता है। अगर ये दो चीजें सद जाएं तो समझ लीजिए कि अच्छे स्वास्थ्य का बीमा हो गया।
आहार का मतलब तो भोजन हुआ, लेकिन मुझे लगता है यहाँ इसका मतलब सिर्फ अच्छा खाना खाओ से कहीं ज्यादा गहरा होगा।
आपने सही पकड़ा। आहार का मतलब है स्वाद की गुलामी से आजाद होना और स्वास्थ्य को अपना लक्ष्य बनाना। भोजन ऐसा हो जो आसानी से पचे, पौष्टिक हो
और सही मात्रा में लिया जाए।
सबसे जरूरी, पेट पर उतना ही बोझ डालना जितना वो आसानी से उठा सके। इसे ऐसे समझिए कि आप एक बहुत कीमती गाड़ी में सही और अच्छी क्वालिटी का ईंधन ही डालेंगे, है ना?
हाँ, बिल्कुल।
हमारा शरीर उस गाड़ी से कहीं ज्यादा कीमती है, तो उसमें हम कुछ भी कैसे डाल सकते हैं?
और ये व्यवहार का क्या अर्थ है? ये शब्द उतना आम नहीं है।
विहार का अर्थ है हमारी दिनचर्या, हमारा रहन सहन। इसमें समय पर शौच जाना, स्नान करना, सोना जागना, परिश्रम करना और आराम करना, ये सब शामिल है।
मतलब एक डिसिप्लिन्ड रूटीन।
हाँ, एक व्यवस्थित और आलस्य से रहित दिनचर्या को अपनाना ही विहार को साधना है। यह हमारे जीवन में एक अनुशासन, एक लय लाता है जो शरीर को अपनी प्राकृतिक अवस्था में रखता है।
ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ये बहुत व्यक्तिगत बातें हैं, मेरा शरीर, मेरा स्वास्थ्य। लेकिन सत्संकल्प इस बात पर भी जोर देता है कि स्वस्थ रहना सिर्फ एक निजी मामला नहीं है।
बिल्कुल नहीं, इसका एक बड़ा सामाजिक और राष्ट्रीय पहलू भी है।
वो कैसे?
भर होता है। वो अपने जीवन को चलाने के लिए मेहनत कर सकता है और साथ ही समाज के लिए भी कुछ उपयोगी काम कर सकता है।
और इसके उलट, जो व्यक्ति कमजोर और बीमार है,
वो दूसरों पर बोझ बन जाता है। परावलंबन यानी दूसरों पर निर्भर रहना एक बहुत ही अपमानजनक स्थिति है। ऐसा व्यक्ति न तो खुद सम्मान से जी पाता है और न ही किसी और की मदद कर पाता है।
इसका मतलब तो ये हुआ कि अपनी सेहत का ध्यान न रखना एक तरह की सामाजिक गैर जिम्मेदारी भी है। मैं सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहा बल्कि समाज पर भी एक बोझ बन रहा हूँ।
निश्चित रूप से, सत्संकल्प ये साफ करता है कि अपने और दूसरों के विकास में योगदान वही दे सकता है जो खुद स्वस्थ और समर्थ हो। इसीलिए अस्वस्थता को सबसे बड़ा दुर्भाग्य और अभिशाप माना गया है। जीवन की गिनती उतनी ही समय की होती है जितना स्वस्थ रहकर जिया जा सके, बाकी तो सिर्फ जिंदगी काटना है, जीना नहीं।
सत्संकल्प में परिश्रम के महत्व को समझाने के लिए एक बहुत ही रोचक कहानी दी गई है, एक किसान और बीमारियों की कहानी।
हाँ, ये एक प्रतीकात्मक कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि एक समय था जब सारी बीमारियां एक पहाड़ पर आराम से रहती थीं।
अच्छा।
एक किसान को खेती के लिए जमीन की जरूरत पड़ी तो उसने उस पहाड़ को ही काटना शुरू कर दिया। अब अपने घर को टूटता देख पहाड़ को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटियों यानी बीमारियों को आदेश दिया
कि जाओ इस किसान पर हमला करो।
हाँ, और इसे खत्म कर दो।
फिर क्या हुआ? क्या बीमारियां उस पर हावी हो गईं?
नहीं, यही तो कहानी का मजा है। बीमारियां पूरे दलबल के साथ किसान पर चढ़ बैठी, लेकिन किसान ने परवाह नहीं की। वो अपने काम में लगा रहा।
वाह!
वो कुदाल चलाता रहा और उसके शरीर से पसीने की धार बह निकली। कहते हैं उसी पसीने में लिपटी ही सारी बीमारियां भी बह गईं।
क्या बात है!
तब पहाड़ ने अपनी बेटियों को गुस्से में श्राप दिया कि तुम इतनी निकम्मी निकली कि मेरा काम ना कर सकी, अब जहां हो वहीं पड़ी रहो।
कमाल की कहानी है। तो इसका सार यह है कि तब से बीमारियां परिश्रमी लोगों पर असर नहीं कर पाती।
बिल्कुल, केवल आलसी और आराम पसंद लोग ही आसानी से उनके शिकार होते हैं।
मेहनत का पसीना बीमारियों के लिए सबसे बड़ी दवा है। ये सुनकर मुझे आजकल की जो ब्लू जोन्स की रिसर्च है उसकी याद आ गई। हाँ, जहाँ दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोग अक्सर किसान या चरवाहे होते हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं। लगता है ये प्राचीन ज्ञान और आज का विज्ञान एक ही बात कह रहे हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। परिश्रम शरीर के विकारों को स्वाभाविक रूप से बाहर निकालता है और हमारी जीवनी शक्ति को मजबूत करता है।
तो अब तक हमने दर्शन को समझा, कारण को समझा, लेकिन अंत में क्या सत्संकल्प हमें कुछ ठोस व्यावहारिक उपाय भी बताता है जिन्हें हम आज से ही अपनाना शुरू कर सकें?
हाँ, और ये सबसे जरूरी हिस्सा है। सत्संकल्प ये भी साफ करता है कि दवाइयों का सहारा सिर्फ एक लाठी की तरह है।
मतलब?
जरूरत पड़ने पर लिया जा सकता है, लेकिन चलना तो हमें अपने पैरों से ही पड़ेगा। असली सेहत जीवन शैली से ही आती है।
तो जीवनी शक्ति को बनाए रखने के लिए कुछ साधनाएं बताई गई हैं?
हाँ, कुछ साधनाएं हैं। सबसे पहले है उपवास। ये जीभ के चटोरेपन और जरूरत से ज्यादा खाने की आदत पर लगाम लगाने का सबसे अच्छा तरीका है।
आजकल जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं।
हाँ, ये उसी का एक आध्यात्मिक रूप है। दूसरा है मौन एवं ब्रह्मचर्य। ये दोनों साधनाएं हमारी जीवनी शक्ति को फालतू में खर्च होने से बचाती हैं, उसे शरीर के अंदर सहेज कर रखती हैं।
ठीक है, और
तीसरा है श्रमशीलता, यानी अपनी दिनचर्या में मेहनत को एक जरूरी हिस्सा बनाना। और चौथा है नियमितता, मतलब जीवन के सभी जरूरी कामों को, सोने जागने से लेकर खाने पीने तक, एक अनुशासन में बांधना,
ताकि जीवन में कहीं कोई बिखराव ना आए।
सही।
तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हमारा शरीर प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है, एक पवित्र मंदिर।
इसे केवल सजाने संवारने की चीज या भोग का साधन नहीं मानना चाहिए,
बल्कि आत्म विकास और समाज की सेवा का एक जरूरी उपकरण मानना चाहिए।
सही कहा। और इस उपकरण को, इस मंदिर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारा पहला आध्यात्मिक और सामाजिक कर्तव्य है।
आत्मसंयम और नियमित दिनचर्या से इसके आरोग्य की रक्षा करना सिर्फ एक व्यक्तिगत जरूरत नहीं है, बल्कि यही वो पहली सीढ़ी है जिससे जीवन की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है।
क्योंकि एक अस्वस्थ व्यक्ति न तो ठीक से भक्ति कर सकता है,
न ज्ञान अर्जित कर सकता है,
और न ही समाज की सेवा कर सकता है।
बिल्कुल।
इस चर्चा के बाद एक विचार मेरे मन में घूम रहा है। अगर शरीर सच में एक मंदिर है, तो हमारे हर दिन के छोटे छोटे चुनाव, जैसे हम क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, अपना समय कैसे बिताते हैं, ये सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़े फैसले नहीं रह जाते।
तो ये क्या बन जाते हैं?
ये एक तरह से उस मंदिर में की जाने वाली पूजा या उसका अपमान बन जाते हैं। इस नजरिए से अपने हर दिन के हर काम को देखना शायद जीवन को एक पूरी तरह से नई दिशा दे सकता है।